ये ऑल इंडिया रेडियो नहीं है, ये जहन की आवाज है। काउंटडाउन नहीं है ये कोई, हारमोनियम की कीज की तरह कुछ गाने काले सफेद से मेरे अंदर बैठ गए हैं। यूं लगता है कि सांसों की आवाजाही पर ये तरंगित हो उठते हैं। कभी काली पट्टी दब जाती है, कभी सफेद। इन गानों को याद करना नहीं पड़ता, बस उन पट्टियों को छेड़ना भर पड़ता है। कुछ गाने मेरे रगों में दौड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे बचपन में माँ ने दूध या घुट्टी के साथ अपनी शहद भरी आवाज में गुनगुनाते हुए इन्हें भी मुझे पिला दिया होगा। ऐसा ही एक गाना जो मुझ में बसा हुआ है वो है राजा नवाथे द्वारा निर्देशित फिल्म बसंत बहार 1956 का। इस म्यूजिकल हिट फिल्म में शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के लिखे और शंकर जयकिशन के संगीत से सजे 9 शानदार गाने थे। फिल्म की कहानी कन्नड़ भाषा के विख्यात लेखक टीआर सुब्बा राव के उपन्यास हंस गीत पर आधारित है, जो 18वीं शताब्दी के कर्नाटक संगीत के शानदार संगीतकार गायक भैरवी वेंकट सुबैया के जीवन पर आधारित है। हंस गीत स्वान सॉन्ग का मिथकीय अर्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि हंस मृत्यु से पूर्व अपना आखिरी गीत गाता है, और वो भी मुंह बंद करके। कहते हैं कि उसका ये आखिरी गुनगुनाना इतना अद्भुत है कि उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शब्दों की सीमा से परे, सॉन्ग विदाउट लिरिक्स। हिंदी सिनेमा में संगीत और फिल्म को दो तरीके से बांधा जा सकता है, फिल्मों के अंदर गाने या गानों के भीतर फिल्म। अंतर ये है कि पहली प्रकार की फिल्मों में फिल्म के महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट्स पर गाने कहानी को स्पष्ट करते हैं या उसकी गति बढ़ाने के लिए रखे जाते हैं, और दूसरे प्रकार की फिल्म में वे हैं जिनकी कहानी ही कुछ उपलब्ध गानों के इर्द गिर्द बुनी जाती है। बसंत बहार दूसरे प्रकार की फिल्म है। कहना गलत न होगा कि शंकर जयकिशन का सुरीला संगीत ही इस फिल्म की जान, स्वाद और निचोड़ है। उसके बिना फिल्म शायद कुछ भी न रहे। शंकर जयकिशन ने इसी फिल्म से अपना कैरियर के सफलतम दौर को शुरू किया और इस विश्वास को पुख्ता किया कि दोनों संगीत की विलक्षण प्रतिभा से भरी एक जोड़ी है। भारत भूषण के अपने प्रोडक्शन की इस फिल्म ने बैजू बावरा, झनक झनक पायल बाजे और तानसेन जैसी म्यूजिकल हिट फिल्मों के संगीत को लोकप्रियता और तो और समालोचक प्रशंसा में भी पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म में
नैन मिले चैन कहाँ, दिल है वही तू है जहाँ, ये क्या किया सैया बावरे।
जैसे मीठे युगल गीत को राग देश जैसे गंभीर राग में प्रस्तुत किया गया, तो राग बसंत बहार में गाई गई पंडित भीमसेन जोशी और मन्ना डे की जुगलबंदी केत की गुलाब जूही फिल्मों में शास्त्रीय संगीत की ठोस और अमिट छाप छोड़ गई। मन्ना डे गाने और पंडित भीमसेन जोशी के साथ जुगलबंदी से इतने अभिभूत थे कि उन्होंने उस्ताद रहमान खान से शास्त्रीय गायन में विशेष प्रशिक्षण लिया। इस गाने को याद करते उन्होंने कहीं बताया है कि कहानी के अनुसार इस गाने में उन्हें पंडित जी को हराना था और वो इस बात से घबराए हुए थे। पंडित जी के दिलासे के बाद ही वो गा सके। गाते वक्त पंडित जी ऊंचे ऑक्टेव पर जाते और धीरे धीरे नीचे आते, और जब उन्हें लगता कि पंडित जी मुखड़े की लाइन पकड़ेंगे तो फिर वे ऊपर चले जाते। ये आरोह अवरोह ऐसा था जैसे किसी विराट कैनवस पर कोई चित्रकार अपनी कूची से हौले हौले रंग भर रहा हो। पंडित जी का शास्त्रीय गायन अद्भुत था और उन्हें सिर्फ फिल्मों में हीरो गोपाल की जीत दर्शाने के लिए ही हराया गया। अन्यथा उन्हें पिछाड़ना असंभव। इस फिल्म के कई गानों में पन्नालाल घोष की अद्भुत बांसुरी का प्रयोग भी इसके संगीत को अद्वितीय बनाता है। फिल्म के सभी नगीने यूं लगते हैं कि जैसे इन हीरों को शंकर जयकिशन ने किसी संगति की कार्यशाला में तराश दिया हो, और ये साबित करते हैं कि ये जोड़ी हर प्रचलन, स्वाद और मांग के अनुसार समान कुशलता से संगीत प्रणयन कर सकती है। और इसी फिल्म में लता के गाए सबसे खूबसूरत नगमों में से एक, जो तीन ताल पर राग झिझोटी में संगीतबद्ध है, भी है। एक अप्सरा पर आधारित इस राग में आत्मदया की भावना से भरे बहुत से और भी शानदार गाने बनाए गए हैं, जैसे
तुम मुझे यूं भुला न पाओगे,
या
मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम,
और सुचित्रा सेन पर फिल्माया अमर गीत,
रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह।
शंकर जयकिशन की तरह लता के अंदर भी रागदारी कूट कूट कर भरी हुई है। अंतरे से मुखड़े पर आने वाले स्थानों को देखिए। अगर आप क्लासिकल संगीत नहीं भी जानते हैं तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसो हर जाई दैया के बाद जो आलाप है वो बहुत संक्षिप्त होते हुए भी सीधा दिल पे चोट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्रीय और सुगम संगीत के जो सबसे आदर्श गुण हो सकते हैं, उसका सबसे बेहतर मिश्रण का उदाहरण हो सकती हैं लता। अपनी गायकी में वो शब्द इस तरह से उभार देती हैं कि शब्द खुद बोलने से लगते हैं, आप अवाक रह जाते हैं। जा जा रे जा के बाद बालमवा इस तरह से कहती हैं कि लगता है तीन कदम आगे बढ़कर एकदम से पलट जाता हो कोई। आप जा जा रे जा के बाद बालमवा में मुड़ने का पूरा एक्शन अनुभव कर सकते हैं। इसी तरीके से गैर के घर करी रात जगाई में एक स्पष्ट आरोप है जो आवाज के दर्प में झलकता है, और एकदम से दूसरी लाइन मुझसे कहे तेरे बिना नींद ना आई में वही उलाहना चिढ़ाने के अंदाज में आ जाता है। ऐसा लगता है तेरे बिना नींद ना आई प्रेमी की कही बात का रिपीटिशन है, उसे जरा सा मिमिक करते हुए, जैसा आम तौर पर प्रेमी प्रेसी के झगड़ों में होता है। हाँ, ऐसी अद्भुत गायकी। और हाँ, जा जा रे जा के बाद कहीं कहीं जो एक एक्स्ट्रा जा है, वही है लता की गायकी का पंच, उनके हुनर का उरूज, उनके लता होने का मुखर प्रमाण। आइसिंग ऑन द केक है ना, बोल भी कैसे सशक्त है देखिए।
कांधे लगा लाए बिंदिया किसी की,
आह कमीज के बटन पे सौतन के बाल नहीं, कॉलर पर लिपस्टिक के दाग नहीं, वो देखती है पति के कंधे पर सौतन की बिंदी। बेवफाई का ऐसा सजीव, रंगीन और तीक्ष्ण बिंब कहाँ देखने को मिलता है। कहानी के अनुसार ही शायद गाने को एक मुजरे के रूप में फिल्माया गया है। राधाबनी कुमकुम ने इस पर सुंदर कथक नृत्य भी किया है, लेकिन एक दरबारी गाने से इतनी मीठी और बांध लेने वाली भावनाएं मुझ में क्यों उठती हैं? वो इसलिए कि इसमें प्रेयसी अपने प्रेमी को उसकी बेवफाई पर इतने संगीतमय ढंग से उलाहना देती है कि सुनने वाले का उसके दर्द के साथ एक अनोखा जादुई रिश्ता सा स्थापित हो जाता है। अगर आप भी बेवफाई की व्यथा को संगीत में जादू के माध्यम से महसूस करना चाहते हो तो YouTube के लिंक को क्लिक कीजिए और स्वर कोकिला के साथ मार्मिक मधुरता की दुनिया में चले जाइए।